नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। आज संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम सर्वोच्च न्यायालय में संविधान दिवस समारोह में शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने आयकर विभाग की पैन परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी। ये एक एकीकृत प्लेटफॉर्म होगा। सरकार 1939 करोड़ रुपए के निवेश से अरुणाचल प्रदेश के शियोमी जिले में हियो पनबिजली परियोजना स्थापित करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से दिल्ली NCR में शिक्षा संस्थानों में कक्षाओं पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने पर विचार करने को कहा और 13 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी IPL के लिए अनुबंधित होने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्र आज संविधान अंगीकार किए जाने की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। आज ही के दिन संविधान को अंगीकार किया गया था। सरकार ने इस अवसर पर आज से एक वर्ष तक चलने वाले समारोह की शुरुआत की है। ये समारोह 26 नवंबर 2025 तक देश भर में आयोजित किए जाएंगे। आज संविधान दिवस के अवसर पर दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में एक भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और दिल्ली स्थित दूतावासों के प्रमुख भी उपस्थित होंगे। संविधान दिवस पर एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। इस अवसर पर दो पुस्तकें भी जारी की जाएंगी। इनके नाम है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ए ग्लिम्प्स और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट्स ग्लोरियस जर्नी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर संविधान का संस्कृत और मैथिली संस्करण भी जारी किया जाएगा।
इन समारोहों का आयोजन हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान की टैगलाइन के तहत किया जा रहा है। इसका उद्देश्य संविधान निर्माताओं के योगदान का सम्मान करना और संविधान में निहित मूल मूल्यों को दोहराना है। संविधान दिवस के अवसर पर देश भर में स्कूल, दफ्तर, गांवों और शहरों में बड़ी संख्या में लोग एक साथ संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे। संविधान की विरासत से नागरिकों को जोड़ने के लिए एक विशेष वेबसाइट constitution75.com भी बनाई गई है। कुमार के साथ सुपर्णा सैकिया, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सर्वोच्च न्यायालय में संविधान दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जा रहा है। श्री मोदी न्यायपालिका की वार्षिक रिपोर्ट भी जारी करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश भी उपस्थित रहेंगे। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आयकर विभाग की पैन परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 1435 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस चरण में पूरे मौजूदा तंत्र को संवर्धित किया जाएगा और पोर्टल को एकीकृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पैन के दूसरे चरण में मजबूत साइबर सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। श्री वैष्णव ने यह भी स्पष्ट किया कि मौजूदा पैन नंबर बने रहेंगे।
एग्जिस्टिंग सिस्टम को पूरी तरह से अपग्रेड किया जाएगा। पूरा उसका जो डिजिटल बैकबोन है पीछे, वो कंप्लीट नए तरीके से की जाएगी। कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर का मिशन, इसमें प्रयास किया जाएगा। एक यूनिफाइड पोर्टल रहेगा, इसमें बहुत फोकस दिया जाएगा ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम पर भी।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने अरुणाचल प्रदेश के शियोमी जिले में हियो पनबिजली परियोजना के लिए 1939 करोड़ रुपए के निवेश को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि 240 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाली इस परियोजना से 1000 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। इससे अरुणाचल प्रदेश में बिजली आपूर्ति को बेहतर करने और राष्ट्रीय ग्रिड को संतुलित करने में मदद मिलेगी।
एग्जीक्यूशन इसका नीपको करेगा। अरुणाचल प्रदेश को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, 12% पावर फ्री मिलेगा। जो अरुणाचल प्रदेश की इक्विटी है उस इक्विटी पे रिटर्न भी आएगा। इस प्रोजेक्ट में 1940 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है अरुणाचल के लिए भी, पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए भी और भारत की जो ग्रीन एनर्जी की ट्रांजिशन है उसमें भी बहुत बड़ा इसका रोल रहेगा।
समिति ने अरुणाचल प्रदेश के शियोमी जिले में 186 मेगावाट की टाटो वन पनबिजली परियोजना के लिए निवेश प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने रेल मंत्रालय की 3 परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। इन पर लगभग 7,927 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इन परियोजनाओं में मनमाड़ जलगांव रेल लाइन, भुसावल खंडवा रेल लाइन और प्रयागराज मानिकपुर रेल लाइन शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मनमाड़ जलगांव परियोजना से महाराष्ट्र के बंदरगाहों से माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी।
160 किलोमीटर का ये रूट है, 2,773 करोड़ रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। मुंबई कोलकाता और मुंबई से वाराणसी, ये दोनों के दोनों रूट इस प्रोजेक्ट से डीकंजेस्ट हो जाएंगे और यहाँ कैपेसिटी बढ़ेगी, नई गाड़ियां चलाई जा सकती है, कंटेनर्स जल्दी तेजी से मूव होंगे।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी प्रमुख पहल अटल इनोवेशन मिशन AIM को 31 मार्च 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए 2,750 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। मिशन का दूसरा चरण देश में नवाचार और उद्यमिता के वातावरण को विस्तार, मजबूती और गहराई प्रदान करेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व आकांक्षी जिलों और प्रखंडों में 2,500 नई प्रयोगशालाएं खोली जाएंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई चेतना के तीसरे चरण में कल 13 राज्यों में 227 जेंडर रिसोर्स सेंटर्स का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। श्री चौहान ने लोगों से देश में महिलाओं पर हो रही हिंसा को दूर करने के लिए आवाज उठाने की अपील की।
हर गांव में चेतना जागृत करने का प्रयत्न होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, कि बहन और बेटी के खिलाफ हिंसा ना हो और अगर कहीं होती है तो चुप ना रहें, आवाज उठाएं और जो जिम्मेदार जवाबदार है उसको सजा दिलवाएं। हिंसा मुक्त वातावरण में हमारी बहन और बेटियां जिए।
इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि इस मिशन का उद्देश्य हर किसी के भीतर से हिंसा के भय को समाप्त करना है।
इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं और विभिन्न जेंडरों के व्यक्तियों के अधिकारों को आगे बढ़ाना तथा उनके जीवन को भय और जेंडर आधारित भेदभाव से मुक्त करना है, ताकि महिलाएं अपने साथ हुए हिंसा के बारे में वो रिपोर्ट भी कर सके और जी सके।
प्रसार भारती, रेलटेल और प्लेबॉक्स टीवी रेलवायर ब्रॉडबैंड पर फ्रीडम प्लान शुरू करेगा। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी तथा रेलटेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजय कुमार ने कल नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की। इसका उद्देश्य पारंपरिक और आधुनिक प्रसारण के बीच की दूरी को कम करना तथा निर्बाध कनेक्टिविटी और उत्कृष्ट मनोरंजन उपलब्ध कराना है। श्री द्विवेदी ने कहा कि देश डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ रहा है और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म प्रसार भारती के लिए एक बड़ी छलांग है।
प्रसार भारती में ग्रामीण और शहरी का कोई भेद नहीं है। हमारा जो दायित्व है वो ये है कि भारत के हर नागरिक तक हमें सेवाएं पहुंचानी है। हमारा एक प्रयास है कि एक कंसोलिडेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोगों तक समाचार, जो जानकारियां हैं, जो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स हैं, पहुंचा सके।
गोवा में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आज 6 दिन 70 से अधिक फिल्में दिखाई जाएंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एक्सेसिबल इंडिया एक्सेसिबल फिल्म्स खंड में फिल्मों को ऑडियो विवरण और भारतीय सांकेतिक भाषा के साथ प्रदर्शित किया गया है, जिससे दृष्टिबाधित और बधिर दर्शक भी इन फिल्मों का आनंद ले सकेंगे।
माइग्रेशन, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 और दी सीक्रेट लाइफ ऑफ पेट्स 2 जैसी फिल्मों की स्क्रीनिंग शहर के विभिन्न समुद्र तटों पर की जाएगी। आज मास्टर क्लास में क्रिस किर्शबॉम, स्टीफन वूले और सेंथिल कुमार के सत्र आयोजित किए जाएंगे। आज शाम शताब्दी सत्र में आसमान से आया फरिश्ता, मोहम्मद रफी, द किंग ऑफ मेलोडी का आयोजन किया जाएगा। सांस्कृतिक उत्सव इफिएस्टा में देश विदेश के सिने प्रेमियों का जमावड़ा रहेगा। ओमवेश उपाध्याय के साथ दुर्गेश भदौरिया, आकाशवाणी समाचार, गोवा।
आज से 13वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जियो स्पेशियल सूचना प्रबंधन एशिया प्रशांत सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। नई दिल्ली में भारत मंडपम में शुरू हो रहे 4 दिन के सम्मेलन में भारत के 120 प्रतिनिधियों समेत 30 देशों के 90 प्रतिनिधि शामिल होंगे। जियो स्पेशियल डेटा स्थान विशेष का समय आधारित डेटा होता है। देश के महासर्वेक्षक हितेश कुमार एस मकवाना ने बताया कि भारत जियो स्पेशियल के मामले में एशिया प्रशांत क्षेत्र में अग्रणी स्थान प्राप्त कर रहा है।
India is now taking leadership position in Asia-Pacific region for overall development of geospatial sector. During this conference, various important subjects would be discussed. It will strengthen the role of geospatial data in addressing common challenges at global, regional and country level.
आज राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है। ये दिवस देश में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह पशुधन तथा डेयरी क्षेत्र के लिए गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान करेंगे। देश में श्वेत क्रांति का उद्गम स्थल माने जाने वाले गुजरात में पिछले कुछ वर्षों में दुग्ध उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि पिछले 22 वर्षों में राज्य में दुग्ध उत्पादन में औसतन 10.23% की दर से 119,63,000 मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है।
भारत के कुल दूध उत्पादन में राज्य का योगदान 7.49% है। केवल 6 सदस्य यूनियन और 49 करोड़ के टर्नओवर के साथ शुरू हुए अमूल फेडरेशन के वर्तमान में गुजरात में 18 सदस्य संघ है, जिनके माध्यम से अमूल द्वारा हर दिन राज्य भर में से 3 करोड़ लीटर से अधिक दूध एकत्रित किया जाता है और इससे विभिन्न उत्पाद तैयार किए जाते हैं जो पूरे भारत और लगभग 50 विभिन्न देशों में बेचे जाते हैं। गुजरात सरकार का पाटन में 6 सीमेंट प्रयोगशाला स्थापित करने का निर्णय अच्छी गुणवत्ता वाले पशुधन को सुनिश्चित करने के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
सर्वोच्च न्यायालय ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को दिल्ली सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शिक्षा संस्थानों में कक्षाओं पर जारी प्रतिबंधों में ढील देने पर विचार करने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि ऐसे विद्यार्थियों की संख्या काफी अधिक है जिनके घर में एयर प्यूरिफायर नहीं है, इसलिए घर पर रहने वाले बच्चों और स्कूल जाने वाले बच्चों के बीच कोई विशेष अंतर नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि कुछ छात्रों को मध्याह्न भोजन की सुविधा से वंचित किया जा रहा है और ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए उनके पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। इस बीच दिल्ली में वायु गुणवत्ता की श्रेणी बहुत खराब बनी हुई है। आज सुबह 6 बजे तक औसत वायु गुणवत्ता 396 थी। 13 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। आईपीएल 2025 के लिए राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 1,10,00,000 रुपए की कीमत पर अपनी टीम में शामिल किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
धन्यवाद विशाल। संसद के शीतकालीन सत्र की हंगामेदार शुरुआत आज के सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर है। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, अदाणी के मुद्दे पर हंगामे की भेंट चढ़ा सत्र का पहला दिन। वहीं वीर अर्जुन में सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को दिया है जनता से खारिज, लोग हुड़दंगबाजी से संसद को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। देश के विद्यार्थियों को दुनिया भर के शोध और आलेख अब एक ही मंच पर होंगे उपलब्ध। राजस्थान पत्रिका के अनुसार केंद्र सरकार ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को मंजूरी दी है। संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द बने रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला नवभारत टाइम्स सहित कई अखबारों में है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच में भारत की शानदार जीत को दैनिक भास्कर ने सचित्र देते हुए लिखा है, भारत की ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी जीत, पर्थ का किला भेदकर 295 रन के रिकॉर्ड अंतर से जीता पहला टेस्ट।
धन्यवाद नवीन। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम सर्वोच्च न्यायालय में संविधान दिवस समारोह में शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने आयकर विभाग की पैन परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी। सरकार 1,939 करोड़ रुपए के निवेश से अरुणाचल प्रदेश के शी योमी जिले में हियो पनबिजली परियोजना स्थापित करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से दिल्ली एनसीआर में शिक्षा संस्थानों में कक्षाओं पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने पर विचार करने को कहा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।